हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 20। कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, न जायते मिर्यते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते मिर्यते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते मिर्यते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते मिर्यते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत ही सुंदर श्लोक है। शब्दों का अर्थ देखिए, भगवान ने कहा न यानी कभी नहीं, जायते यानी पैदा होता है, जन्म कभी नहीं लेता, जन्म कभी नहीं लेता और बाद में मिर्यते यानी मरता भी कभी नहीं है, वा या कदाचित कभी भी यानी भूत वर्तमान या भविष्य, कभी भी ऐसा नहीं है कि उसका जन्म हुआ हो या उसकी मृत्यु हुई हो। ना यम, न मन कभी नहीं, यम मतलब ये, भूत्वा, भूत्वा मना पास्ट में होकर, भविता यानी होने वाला प्रेजेंट में, वान भूयः, वान मतलब कभी नहीं, भूयः मतलब अथवा पुनः होने वाला यानी फ्यूचर में, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो उसने जन्म लिया हो या उसकी मृत्यु हुई हो। और आगे अज, अज मतलब अजन्मा, नित्यः यानी कि वो नित्य इटर्नल, शाश्वत मतलब स्थाई यानी नित्य मतलब शुरू से है, शाश्वत मतलब आखिर तक रहेगा, और अयम मन ये पुराण मतलब सबसे प्राचीन, न नहीं, हन्यते मारा जाता है, हन्यमाने मारा जाता शरीरे। अनुवाद देखिए, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है न ही जन्म लेगा, वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मरता। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए हृदय से समस्त भौतिक आसक्ति और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरण्डस्य ज्ञानञ्जनाशलाखय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కరామహయం దదాతి స్వపదాంతికం. వందే అహం శ్రీ గురుః శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాశ్చ శ్రీరూపం సాగరజాతం సహగణ రఘునాథద్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాన్ సహగణలలిత శ్రీవిశాఖాన్వితాశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపీశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్తా కాంచన గౌరంగే రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభాను సూతదేవీ ప్రణమామి హరిప్రియ. వంశకల్పతరు భయశ్చ కృపాసింధుభ్యైవ చ పతితనాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైతం గదాధరం శివాసది గౌర భక్తవృంద. హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ హరి రామ 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 హరి హరి. గ్రంథ రాజ్ శ్రీమద్ భగవద్గీత కీ జయ హో. అథ సాంఖ్య యోగో నా ద్వితీయ అధ్యాయ శ్లోక సంఖ్య 20 శ్లోక నంబర్ బహుత్ హి సుందర్. ఆజ్ భగవాన్ హమే ఆత్మా కే స్థాయిత్వ కే విషయ మే ఔర్ భీ ఆగే బతా రహే హై. భగవాన్ కే రహే హై, న జాయతే మేర్యతే వా కదాచిన్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః. అజో నిత్యః శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతి హన్యమానే శరీరే न जायते मिर्यते वा कदाचन. वो कभी भी जन्म नहीं लेता है और मरता भी नहीं है. अब भगवान ने बता दिया न जायते मिर्यते, यानी कि वो पैदा भी नहीं होता है, मरता भी नहीं है. वाह, फिर ये बोल देने के बाद इनफ था. अगर भगवान ने बोल दिया कि वो कभी भी जन्म नहीं लेता है और मरता नहीं है तो काफी. लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कदाचिन. ऐसा मत सोचना कि कोई समय ऐसा है. कदाचिन मतलब कभी भी नहीं, ठीक है. कदाचिन के साथ कभी भी आ गया और कभी भी के साथ क्या आ गया, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब आ गया ना. तो भगवान ने कहा कदाचिन नाया, वो कभी भी नहीं जन्म लेता है, ठीक है. वहां पर भी भगवान ने स्टॉप नहीं किया कि कहीं कोई ऐसा ना सोच ले कि कभी ना कभी इस आत्मा की स्टार्ट हुई होगी, कभी ना कभी ऐसा समय आया होगा जब भगवान से ये आत्मा निकली होगी या परमात्मा से ये आत्मा निकली होगी. फिर वापस भगवान श्री कृष्ण ने इसी बात को जोर देते हुए कहा नायम भूत्वा. भूत्वा मतलब पास्ट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि उस आत्मा का जन्म हुआ हो. और आगे भविता, भविता माना फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं होगा कि उसका उसकी मृत्यु होगी, ठीक है. पास्ट में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसका जन्म हुआ हो और फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं होगा कि उसकी मृत्यु होगी. वा न भूयः, और अभी ना ऐसा हो रहा है, वो ये हमारा प्रेजेंट में ऐसा नहीं हो रहा है जो आप देख देख रहे हो, आपको मरते हुए या जन्मते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आत्मा का नहीं हो रहा है, वो तो खाली शरीर का हो रहा है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने दो लाइनों में एक ही चीज को बार बार जोर देके कहा। पहले बोला न जायते मरियते, कभी भी जन्म नहीं होता, मरता नहीं है, वा कदाचन, कभी भी नहीं, कभी भी मैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब आ गया, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण आगे बोल रहे नायम भूतवा भविता वानभू, यह ना ही पास्ट में ना फ्यूचर में और ना ही यहाँ पर प्रेजेंट में कभी उसका जन्म या मृत्यु होता है। आगे आत्मा की, आगे वाली तीसरी लाइन में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की चार क्वालिटीज बता रहे हैं, कौन कौन सी, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। अब अजो मतलब अजन्म, उसकी उसका कभी भी जन्म नहीं हुआ, हालांकि भगवान ने पहले ही बोल दिया कि कभी भी जन्म और मृत्यु नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वापस बोला अजो अजन्मा है, ऐसा मत सोचना कि तुम्हारा कभी जन्म हुआ है, हम आत्मा है और आत्मा अजो है, अजन्मा है। और नित्य, नित्य मतलब इटर्नल, वो शुरू से है, मतलब ऐसा है कि कभी ऐसा हुआ होगा कि वृक्ष न हो, कभी ऐसा हुआ होगा कि धरती ना हो, कभी ऐसा हुआ हो कि आसमान ना हो, कभी ऐसा हुआ हो कि ये सारे लोक ना हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आत्मा ना हो। और आगे, और ऐसा भी नहीं हो सकता ना, यानी कि उसका जन्म भी नहीं हो सकता, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अभी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए भगवान दूसरी दूसरी आत्माएं पैदा करे, नहीं, जितनी है उतनी शाश्वत है ना, देखो अभी उसके बाद है शाश्वत, यानी कि वो कभी भी उसका एंड नहीं होगा, वो शुरू से है और आखिर तक रहेंगे। नित्य मतलब स्टार्ट से ही है, जितनी आत्माएं हैं उतनी ही आत्माएं, ऐसा नहीं कि थोड़े दिनों के बाद भगवान फिर दूसरी आत्माएं निकालते हैं, फिर दूसरी आत्माएं प्रकट करते हैं, दूसरी आत्मा नहीं प्रकट करते, जितनी भी आत्माएं हैं वो नित्य है और शाश्वत है। और पुराणों, पुराणों का मतलब होता है बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं कि आज नवीन जन्म हुआ है, नहीं, जब से भगवान, यानी कि जब से भगवान है मतलब हमेशा से है। नित्य का मतलब होता है कि जिसका कोई स्टार्ट ना हो, और शाश्वत का मतलब होता है जिसका कोई एंड ना हो। तो पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर, न हन्यते मतलब मारा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कि तुम शरीर को मार दो, और हन्यमाने शरीर, शरीर के मारने से आत्मा कभी भी नहीं मरती है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद और शुभपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गुणात्मिक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है, क्योंकि आत्मा भगवान का ही अंश है, तो उसके गुण, उसकी क्वालिटीज जो है वो भगवान से अलग नहीं है, सेम क्वालिटीज है। क्या क्वालिटीज है भगवान की, अजो नित्य है शाश्वत हो यम पुराण, भगवान भी अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराणन है, और आत्मा की भी यही क्वालिटीज है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं, अब शरीर के अंदर विकार होते हैं, ये चेंज होता है, पैदा होता है, बढ़ता है, फूलता है और फिर मरता है, क्षीण होता है, ये सब शरीर के विकार है, बट आत्मा इटर्नल है, वो एज इट इज रहती है। ऐसा नहीं है कि छोटे गिड़े के अंदर छोटी आत्मा होती है, या फिर छोटे बच्चे की छोटी आत्मा होती है, बड़े लोग की बड़ी आत्मा होती है, हाथी के अंदर बड़ी आत्मा होगी और ना चींटी के अंदर बड़ी आत्मा होगी, छोटी आत्मा होगी, अमेबा के अंदर सबसे छोटी आत्मा होगी क्योंकि उसके अंदर वन सेल होता है, ऐसा नहीं है, वो एज इट इज रहती है, वो उसकी क्वांटिटी बढ़ती नहीं है। जब आत्मा हाथी के अंदर भी चली जाएगी ना, फिर भी बाल के अग्रभाग के समय सॉरी 10,000वें हिस्से के बराबर ही होगी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं शरीर विकारी, शरीर की भांति विकारी नहीं, उसमें चेंजिंग नहीं आती, कभी कभी आत्मा को स्थाई या कूटस्थ कहा जाता है, यानी कि उसका स्थाई का मतलब होता है एज इट इज रहना, कभी भी चेंज ना होना। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं, अब कौन कौन सी चेंजिंग होती है, रूपांतर मतलब उनके रूप में चेंजिंग आती है शरीर के अंदर, क्या, वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, अब देखो पहले जन्म नहीं लिया था तो वो नहीं नजर आ रहा था, ठीक है, पहला उसके अंदर क्या रूपांतर आया कि उसने जन्म लिया, कुछ काल तक रहता है, ठीक है, अब जन्म लेता है तो कुछ काल तक रहता है, वही छोटा रहता है, फिर क्या होता है, बढ़ता है और बड़ा हुआ कौमारम यौवनम, बड़ा होते होते बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है और कुछ परिणाम उत्पन्न करता है। फिर शादी हो जाती है तो फिर अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है और धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बूढ़ा हो जाता है और अंत में वो समाप्त हो जाता है। बूढ़ा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, समाप्त हो जाती है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं आते। आत्मा अजन्मा है किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। अब शरीर जन्म तब लेता है जब आत्मा ने आत्मा किसी शरीर के अंदर डाल दी जाती है। जैसे हमारे कर्मों के अनुसार जिस भी शरीर में हमारी आत्मा को डाल दिया जाएगा तो उस कर्मों के हिसाब से एक माता दे दी जाएगी जिसके गर्भ में पहले हमारा जन्म होता है और फिर उसके जरिए से हम इस संसार में आते हैं। आत्मा ना तो जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेता, आत्मा सिर्फ ट्रांसफर होता है, बस उसके अंदर से डाल दिया, उसमें उसके अंदर से जैसे जैसे कर्म होते जाएंगे। कभी कभी ना मनुष्य के जन्म में डाल दी जाती है, कभी उच्च लोकों में अच्छे काम करते हैं तो देवताओं के लोकों में चली जाती है और निम्न कार्य करते हैं तो जानवरों की योनि में चली जाती है। जैसे जैसे कार्य करते जाएंगे ना ऐसे ऐसे आत्मा को ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस शरीर के अंदर जैसे जैसे हमने काम किए होंगे। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते, आत्मा अजन्मा है किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है, एकदम ये परफेक्ट ये स्टेटमेंट है कि कभी भी उसका जन्म नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनादि, उसका कभी भी आदि नहीं है कि हम सोचें कि भाई ये दफा हमने फर्स्ट टाइम मेरा पहला बार ये था, मतलब पहली बार जब मैं संसार में आया था, आत्मा जब ये सोचे कि मैं पहली बार संसार में आया था या पहली बार मेरा जन्म हुआ था, ऐसा नहीं। हाँ संसार में आना हो सकता है क्योंकि संसार हो सकता है बाद में बना होगा ना, पहले भगवान ने सृष्टि की रचना नहीं की थी, लेकिन आत्मा की रचना नहीं करी भगवान ने, आत्मा शुरू से है। और जब आत्माएं बहुत सारी हैं, भगवान की शक्ति है, भगवान कहते हैं मेरी पराशक्ति है, तो भगवान ने इस आत्मा के जरिए आनंद, क्योंकि हमें भगवान की शक्ति है तो उस आत्मा के जरिए आनंद प्राप्त करने के लिए इस सृष्टि की रचना की। लेकिन आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेता, क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य है। भगवान ने साफ साफ कहा भूत्वा भविता वा न भूयः, उसका कोई भी पास्ट नहीं है और ना ही प्रेजेंट है, ना ही फ्यूचर में कभी ऐसा होगा कि ये एंड होगी, इसका एंड नहीं होगा। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है। नित्य मतलब जो शुरू से है, शाश्वत मतलब जो आखिर तक रहेगा, सनातन का मतलब होता है एज इट इज, जो सनातन है यानी कि उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारा स्टार्ट कैसे हुआ, हम ऐसे बोलते हैं कि हम भगवान से निकले हैं या फिर हम स्टार्ट कैसे हुए, तो ये क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम शरीर से रिलेटेड हैं तो हमको ये ऐसा ही आता है कि शरीर कैसे जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर ऐसे आत्मा का भी कभी कभी तो कभी ना कभी तो स्टार्ट हुआ होगा ना। लेकिन भगवान कहते हैं भूत्वा भविता वानभूयः, कभी भी ऐसा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो जन्म लेगी या मरेगी। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होती है, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसे अनुभूति पाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बूढ़ा भी हो जाता है फिर भी उसके अंदर ऐसे ही बच्चों जैसे या फिर जवानों जैसे सोच रहती है, तो आत्मा क्योंकि उसके अंदर एज इट इज है तो फिर वो कोई भी सोच सकता है किसी भी तरह से। हम अपने आप को बूढ़े लोग भी होते हैं तो भी यंगेस्ट जैसा कार्य करते हैं कि, लेकिन उसका शरीर जो है वो बूढ़ा होता है लेकिन आत्मा नहीं होती। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होती। जो भी संसार की भौतिक वस्तुएं हैं वो एक न एक दिन क्षीण हो जाती हैं, वृद्ध होती हैं, लेकिन आत्मा में चेंजिंग नहीं आती। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। उपसृष्टि का क्या मतलब है पता है कि उसमें से कोई दूसरी नहीं बनती। जैसे अमीबा में से दूसरा अमीबा बनता है ना, ऐसे नहीं होता। जैसे शरीर में, अब ऐसा हम लोग सोच सकते हैं ना, जैसे एक माँ है जब गर्भ धारण करती है तो फिर किसी बच्चे को जन्म देती है, किसी शिशु को जन्म देती है, तो माँ के अंदर एक आत्मा, और फिर वो अपने अंदर से दूसरा शिशु जब जन्म लेती है तो मतलब दूसरी भी तो आत्मा उसके अंदर निकली है ना, लेकिन उसकी उसने उस ये उसकी उपसृष्टि नहीं है, शरीर से शरीर ने जन्म लिया है और आत्मा जो है वो उसमें ट्रांसफर कर दी गई है, जहां से मतलब जैसे जैसे उसने कर्म किए थे उसके अनुसार उसको जन्म मिला है। ये शरीर ने नहीं बनाया, आत्मा के उस शरीर के अंदर से आत्मा नहीं निकली है, आत्मा उसके अंदर डाल दी जाती है, प्रकृति के अंदर डाल दी जाती है। शरीर की उपसृष्टि संतानों और वे भी व्यष्टि आत्मा, यानी कि शरीर की उपसृष्टि, शरीर में से जो सृष्टि बनती है, दूसरा संतान पैदा होता है और वे भी व्यष्टि आत्मा। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर से निकली तो वो ही उसी के उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है। वास्तव में जो हमारी संतान होती है ना, वो भी हमारा उस आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता। आत्मा का रिलेशन केवल परमात्मा के साथ होता है, लेकिन क्योंकि वो भौतिक शरीर के साथ जब रिलेटेड हो जाती है तो फिर शरीर के साथ मोह हो जाता है, राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है, जिसके कारण वो हमारे रिलेशंस बनते हैं। शास्त्र कहता है समुद्र के किनारे पर रेत के उतने कण नहीं है जितने कि पिछले जन्म में आपके सगे संबंधी रह चुके हैं। यानी कि ऐसा है ही नहीं कि किसी के साथ हमारा मोह होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जन्म लेते हैं उनके साथ हम बढ़ते हैं, तो शास्त्र के तनीति शास्त्र कहता है माता पिता के साथ जो कर्तव्य हमें निभाने होते हैं वो ये सब शरीर से है। माता के साथ कर्तव्य, पिता के साथ कर्तव्य, अपने सगे संबंधियों के साथ और देश के साथ, राष्ट्र के साथ, जो भी हमारे ये कर्तव्य है वो शरीर से रिलेटेड होते हैं। आत्मा यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, वे भी व्यष्टि आत्मा है और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं, सिर्फ शरीर के कारण। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी एक और बात बता रहे हैं कि शरीर क्यों बढ़ रहा है, वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। आत्मा को निकाल दो, शरीर नहीं बढ़ेगा। उसकी कभी भी ऐसा नहीं है कि बच्चे की आत्मा अगर बच्चे की अगर आत्मा निकल जाती है शरीर से तो फिर उसको रख दो तो 20 साल में वो जवान हो जाएगा। नहीं, शरीर की वृद्धि क्यों हो रही है, आत्मा की उपस्थिति में होती है। किंतु आत्मा की ना तो कोई उपवृद्धि है ना उसमें कोई परिवर्तन आता है, अतः आत्मा शरीर के 6 परिवर्तनों से मुक्त है। कौन कौन से 6 परिवर्तन बता दे? जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, 3 बढ़ता है, 4 कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, 5 धीरे धीरे क्षीण होता है और 6 नंबर मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये सारे परिवर्तन जो है वो आत्मा के अंदर नहीं आते, अतः आत्मा शरीर के 6 परिवर्तनों से बिल्कुल मुक्त है। कठोपनिषद 1.2.18 इसी तरह का एक श्लोक है। किस तरह का? जैसा हमारा आज श्लोक नंबर 20 है ना, क्या है? न जायते विद्यते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ऐसा ही एक दूसरा श्लोक कठोपनिषद में है। कैसे है? न जायते मिर्यते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न भभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब इन दोनों में क्या रिफरेंस है? यहाँ पर बता रहा है कि इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है। जैसा हमारा है, क्या तात्पर्य है? आत्मा के लिए ना तो किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, ये न कभी जन्मी है न जन्म लेती है और ना ही जन्म लेगी। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा कभी नहीं मरती। तो ऐसा ही उसका अनुवाद है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित आया। देखो आया ना, हमारे पास क्या है? न जायते मिर्यते वा कदाचन, और यहाँ पर क्या है? न जायते मिर्यते वा विपश्चिन। तो यहाँ पर विपश्चिन का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। ये इस एक और भी आत्मा का गुण है कि आत्मा ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, वास्तव में आत्मा ज्ञानमयी है। उसको हर हर जिस तरह भगवान कैसे हैं सच्चित आनंद, तो चित का मतलब होता है ज्ञान। अब आत्मा के अंदर भी यही क्वालिटीज है, आत्मा भी सत्य है। सत्य का मतलब क्या है? जिसका ना कभी एंड हो ना कभी स्टार्ट हो, इटर्नल हो जो और शाश्वत हो, ठीक है। तो ये सत्य है, आत्मा भी उसके अंदर भी है। चित मतलब ज्ञानमय है, उसके अंदर सारी नॉलेज है। अब यहाँ पर ये प्रश्न होता है कि आत्मा जब मेरे अंदर है वो तो ज्ञानमय है, तो फिर हम क्यों अज्ञानी है? हम अज्ञानी इसलिए हैं क्योंकि हम भौतिक शरीर के अंदर हमें कैद, उस आत्मा को कैद कर दिया। अब आवरण आ गया ना, ज्ञान खत्म नहीं हुआ है, ज्ञान जो है वो ढक गया है आवरण से। जो भौतिक शरीर के तीन गुण है हमारी प्रकृति के, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उनके जरिए से हमारी सच्चित आनंदमय आत्मा का जो ज्ञान है ना वो ढक दिया गया है। अब वो कैसे वो ज्ञान में प्रकाशमान कैसे होगा? इतना अच्छा भगवान श्री कृष्ण बता दे 10.10 में भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। अब भगवान हृदय में रहते हैं। देखो हर शरीर के अंदर दो आत्मा है ना, एक आत्मा और एक परमात्मा, दोनों हृदय में है। फिर जब हृदय में नाम स्मरण किया, यानी कि हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तो हृदय की गंदगी साफ हो जाती है। साफ होते 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 फिर भगवान क्या करते हैं कि वो जब साफ करते हैं अंदर बैठे, जैसे जैसे हम नाम लेते रहते हैं तो भगवान हमारे हृदय की मलिनता को साफ करते हैं। फिर उसके अंदर क्या होता है, तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। उन पर विशेष कृपा दृशाने हेतु में ज्ञान के प्रकाशमय दीपक से उनके अज्ञान के अंधकार को नाश कर देता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 10.11 भगवान कहते अंदर बैठा हुआ हूँ और जैसे जैसे नाम स्मरण होता है, आत्मा की अनुभूति होती जाती है, फिर मैं वहां पर जो अंधेरा हो गया, आवृत हो गया ना, हमारी जो चित्त है, हमारा ज्ञान जो है वो खत्म हो जाता है, खत्म नहीं होता मतलब ढक जाता है, तो भगवान वहां पर रोशनी कर देते हैं ज्ञान दीपेन भास्वता। फिर वो जो डगमगा रहा है ज्ञान का दीपक वो प्रज्वलित हो जाता है और फिर से हम ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना शोचती न कांक्षती। फिर हम उस आध्यात्मिक स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं और ना ही कोई इच्छा बाकी रह जाती है। तो यहाँ पर विपश्चित शब्द जो है वो उसका प्रयोग हुआ है। आगे आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। अब वो ज्ञान से पूर्ण रहता है, चेतना लक्षण है, यानी कि जिस शरीर के अंदर आत्मा होगी तो उसके अंदर चेतना होगी। यदि कोई हृदय आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। यानी कि कोई अगर नहीं मानते हैं आत्मा को कि नहीं है आत्मा, जैसे कोई कोई साइंसदान बोलते हैं ऐसे कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, चेतना लेकिन फिर भी मानते हैं, परंतु चेतना तो है ना, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस जो जिसके कारण हम बढ़ रहे हैं, कर कोई भी कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो चेतना आ किधर से रही है वो भले नहीं सोचे लेकिन चेतना है, इतना तो वो जानते ही है ना। जो भी आत्मा को नहीं मानते हैं वो भी, तो इसकी मिसाल श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाते हैं कि कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों में की वजह से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते हैं, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान होता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि बादल इतने घने होते हैं कि आसमान में सूर्य नजर नहीं आता है, लेकिन पता चलता है कि ये सूर्य का प्रकाश होता है, ऐसा एकदम डार्क नहीं हो जाता है, इतना रात नहीं हो जाती है, फिर भी थोड़ा सा प्रकाश रहता है। हम ये तो अनुभव कर सकते हैं कि ये समय जो है वो दोपहर का है या सूर्य है, दिख नहीं रहा है बट है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है, अब देखो सूर्य तो नहीं निकला हुआ होता है, जैसे हम प्रभात को 5:30 बजे या 6 बजे के टाइम पर सूरज नहीं नजर आता ना, लेकिन रोशनी तो हो जाती है, तो फिर हम ये अनुभव कर सकते हैं कि सूर्य है, निकला है। अब सूर्य निकल गया है, दिख नहीं रहा है, वो अलग बात है कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुष के, कुछ ना कुछ चेतना रहती है। अब चेतना मन मूव करता है, वो बढ़ता है, कार्य करता है, तो कोई ना कोई कॉन्शियसनेस तो उसके अंदर है ना। अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं कि उसके अंदर आत्मा, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। अब ये डिफरेंस क्या है, जीव की चेतना यानी जीव की आत्मा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर तक लिमिटेड है। हर शरीर के अंदर अपनी आत्मा है और शरीर के अंदर लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन परमात्मा जो है वो विभू है, उसकी परम चेतना सर्वज्ञ है। अब वो सारे शरीरों में वही परमात्मा है, उसका अंश मतलब ऐसे है जैसे सूरज हो और नीचे 100 घड़े हो, तो सबके अंदर वही सूरज होगा ना, ऐसा नहीं उसका सूरज अलग है उसका सूरज अलग। तो इस तरह से परमात्मा का वही स्वरूप है सबके अंदर। आगे है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण, और जो अंदर आत्मा परमात्मा बैठा हुआ है वो कभी भी ऐसा नहीं है अपना स्वरूप भूल जाए या आवृत हो जाए, उसको वो ज्ञानमयी है, उसका ज्ञान ढकता भी नहीं है, कंटिन्यूअस उसको पता होता है कि पिछले जन्म में इसने क्या काले करतूत किए थे, उसकी वजह से उसको गाइड करता रहता है। हाँ, उसने तुम्हें थप्पड़ मारी थी ना, आज उसको थप्पड़ मारो, उसने तुम्हारे साथ ये किया था, आज उसको ये कर, तो बदला लेने के लिए दूसरा जन्म। ऐसे भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम रिधि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च, कि सबके हृदय में बैठ कर मैं क्या करता हूँ, उनको ज्ञान और स्मृति देता हूँ और विस्मृति भी देता हूँ, भूल जाने की शक्ति भी देता हूँ और याददाश्त भी देता हूँ, ताकि वो पिछले जन्म के अधूरे कार्यों को पूरा कर सके। अब जन्म जन्म बार बार क्यों लेते हैं, ताकि हमें अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। अब हम तो भूल गए होते हैं, एज अ शरीर तो हमें सब कुछ याद नहीं होता है ना, लेकिन अंदर परमात्मा बैठे होते हैं, वो गाइड कर रहे होते हैं, स्मृति देते हैं, विस्मृति भी वही देते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण होते हैं। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है, जीव की चेतना भूल जाती है ना, विस्मरण यानी मैंने अभी पढ़ा ना, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम, ये विस्मृति का मतलब होता है अपोहनम। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। अब वास्तव में देखो भगवान की कितनी हमारे ऊपर कृपा है, क्या भगवान को खबर है ना कि ये नालायक जीव संसार में जाएगा तो मुझे भूल जाएगा, उसे याद नहीं रहेगा, क्योंकि आवृत हो जाएगा ना, उसका ज्ञान ढक जाएगा प्रकृति के गुणों के अनुसार, तो भूल जाएगा। फिर भगवान कितनी कृपा करते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं, शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देते हैं, गुरुओं को भेजते हैं, साधु को भेजते हैं, शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, ताकि किसी तरह से हमें फिर से अपनी स्थिति का ज्ञान हो, हमें पता हो, हमें पता चले कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारा संबंध कृष्ण को प्रसन्न कृष्ण से है, और कृष्ण को प्रसन्न करने से हमारी प्रसन्नता है, हम भगवान के दास हैं। ये सब भगवान जो है वो हमें, कभी कभी लोग बोलते हैं भगवान क्यों आते हैं, तो भगवान इसीलिए आते हैं कि अगर भगवान नहीं आएंगे तो भगवान की लीलाएं कौन गाएगा, यहाँ पर भगवान लीलाएं नहीं करेंगे तो किसी को क्या पता होगा, संत लोग भक्त लोग बताएंगे क्या, और जब वो बताएंगे, क्योंकि लीला ही नहीं होगी कुछ, भगवान की शास्त्र ही नहीं होंगे, तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान की कृपा हम पर कृपा करने के लिए आते, भले भगवान ने बोल दिया परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता, लेकिन आते तो भक्तों से प्रेम के कारण है, अपने बच्चों को वापस से अपने परम धाम के का रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। अब विनाश तो स्वतः हो रहा है, विनाश तो हो ही रहा है, जब सूर्य प्रकाशित होता है तो सूर्य का काम होता है प्रकाश करना,
उसका काम अंधकार को नष्ट करना नहीं होता है, लेकिन सूर्य प्रकाशित हो गया तो अंधकार खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि सूर्य प्रकाशित हो जाता है फिर है ना एक जगह पे जाता है, भाई यहाँ पर तो प्रकाश हुआ ही नहीं है अभी तक। जैसे अब सूर्य कराची में आ गया ना समझो, तो कराची में यहाँ पर ली मार्केट में है ना रोशनी हो गई, और पता चला वो क्यूटन में तो रोशनी नहीं हुई, तो सूर्य भाग भाग के उधर जाएगा कि यहाँ पर भी रोशनी हो जाए, फिर वापस देखेगा गार्डन में रोशनी नहीं हुई, गार्डन में जाके रोशनी करेगा, उसमें जाके रोशनी। तो ऐसा नहीं है, भगवान के प्राकट्य का मेन कारण क्या है? कृपा, कि वो कृपा करना चाहते हैं, लीला करते हैं ताकि भक्त जो है, जो जीव है, वो भगवान की लीलाओं से, भगवान के द्वारा दिए गए शास्त्रों से वापस से अपनी विस्मरण शक्ति, अपनी जो स्मरण शक्ति को तेज करे, और जो भूल गया वो याद करे। अब उसके साथ साथ दुष्टों का विनाश तो हो ही जाता है, भगवान आया है तो यहाँ कृष्ण ताहर ना ही माया अधिकार, क्योंकि जहां पर कृष्ण होंगे तो माया का कोई अधिकार नहीं है, और श्री कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार, ये सब माया, ये राक्षस, ये दुष्ट, ये सब भगवान के सामने टिक नहीं सकते। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, जब वह अपने वास्तव स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। फिर जब भगवान आते हैं, भगवान के जो उपदेश होते हैं जैसे श्रीमद् भगवद गीता, उसके जरिए से हमें वापस बोध प्राप्त होता है, यानी कि अपनी वापस यादगिरी आ जाती है कि मैं कौन हूँ। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है, भगवान कभी भी भूलते नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश का व्यर्थ होता है, यानी कि अगर भगवान भी भूल गए होते कि मैं भगवान हूँ, भगवान के अंदर ऐसा नहीं होता है। ये परिवर्तन, ये आवरण, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना वो प्रकृति से बना हुआ है, भगवान का शरीर प्रकृति से नहीं बना हुआ, भगवान आत्मा है। हमारे अंदर आत्मा कितनी है? छोटी सी है ना, हृदय के अंदर रहती है। भगवान पूरी की पूरी आत्मा है, ऐसा नहीं है कि भगवान का भी शरीर है, कृष्ण का भी शरीर है और उसके हृदय भी है और उसके अंदर आत्मा, नहीं, भगवान पूरा का पूरा आत्मा से बना हुआ है। जैसे मिश्री, देखो मिश्री जो होती है, अब वो पूरी की पूरी मीठी होती है, जिधर से भी आप उसको चूसोगे तो मीठा लगेगा, ऐसा नहीं, मिश्री का बना हुआ। तो इस तरह से आत्मा परमात्मा, हम जो है वो शरीर से बने हुए हैं और आत्मा थोड़ी है, लेकिन भगवान जो है वो पूरा का पूरा आत्मा ही है, उसके अंदर शरीर और आत्मा का भेद नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता, भगवान भी तीनों गुणों से आवृत होते, या फिर भगवान का भी भौतिक शरीर होता, फिर भगवान में और हम में वो अंतर नहीं होता ना। फिर भगवद गीता, क्योंकि फिर भगवान के अंदर भी चार दोष होते हैं ना प्रकृति के, भूल जाना, मोहित होना, गुमराह होना, और है ना गलतियां करना, धोखा देना, ये सब होते, लेकिन भगवान का ये भौतिक शरीर नहीं होता है। भगवान का शरीर नहीं होता है, वो आत्मा ही होती है। आत्मा के दो प्रकार है, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। अभी यहाँ श्री प्रभुपाद जी दो टाइप की आत्मा बता रहे हैं कि एक टाइप की नहीं होती है। एक टाइप की कौन सी होती है? बालक गृह शत भागस्थ, जो हमने पढ़ी है वो एक टाइप की आत्मा है। बालक गृह शत भागस्थ सतदा कल्पित, जो सवा दसवा सॉरी 10,000वां हिस्सा जो है ना बाल का, वो एक है। और दूसरी कौन सी है? विभू है। विभू मतलब उसका कोई नापदंड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। कठोपनिषद में 1.2.20 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, अरोणरीयान महतो महीयान आत्मस्य जन्तोर निहितो गृहायाम तम कृतु पश्यति वीत शोको दातु प्रसादान महिमानमात्मनः। अर्थात अरुणयान यानी कि परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। यहाँ पर अरुणयान महतो महीयान यानी कि वो छोटा सा अणु आत्मा और विभु आत्मा दोनों ही हृदय के अंदर विराजमान है, विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है। अब वापस से पढ़ो, परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। एक हृदय के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी, और उनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। अब संसार में जितने भी जीव हैं, जब वो समस्त इच्छाओं और शोकों यानी ब्रह्मभूत स्थिति को पहुंच जाते हैं तो भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकते हैं। जो आत्मा के विषय में आज हमें भगवान बता रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब वो उस स्टेज तक, जब उसका ज्ञान प्रकाशित हो जाता है तब वो आत्मा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं। अब जो हृदय के अंदर परमात्मा है ना, उसके विषय में बता रहे हैं कि वो कृष्ण नहीं है, वास्तव में ये सोर्स है, उद्गम है उनका, परमात्मा का। ये परमात्मा जो है वो भगवान का एक अंश है, कृष्ण का अंश है। अब यहाँ पर बताया कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कृष्ण जो है वो परमात्मा और ब्रह्म सबका उद्गम है। सब भगवान जो है ना, वो ब्रह्म ज्योति जो है उसके भी उद्गम है। वो भी कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है, ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम। तो कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। अर्जुन अरु आत्मा के समान है, अर्जुन अणु आत्मा माने छोटी वाली आत्मा है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। वास्तव में अर्जुन जो है उसका अज्ञान केवल हमें ये दिखाने के लिए है कि जब जीव आत्मा परमात्मा से विमुख हो जाती है तो भगवान जो है वो उपदेश के रूप में किस तरह से उसे वापस से अपनी चेतना, अपना रियल स्वरूप के विषय में बता रहे हैं। तो ये अर्जुन समझो हमें बस ऐसे एक एक्सपेरिमेंट भगवान ने बताया है इस तरह से कि अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। यानी कि संसार में जब जीव आ जाता है और अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल जाता है तो उसे भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि यानी गुरु महाराज की आवश्यकता होती है, जो उसे फिर से अपने रियल स्टेज तक, अपने असली जगह तक, सच्चित आनंदमय स्वरूप तक पहुंचाए। तो अभी तो हम इस कलयुग में डायरेक्ट से भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आगे कहेंगे 4.34 में, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। तो आपको किसी तत्वदर्शी के पास जाना चाहिए क्योंकि वो आपको बताएंगे कि वास्तविकता क्या है, तुम क्या हो, तुम्हारा किसके साथ संबंध है। तो इसे जिसको भगवान हमें आगे बताते रहेंगे आत्मा के विषय में, ताकि हम अब इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकलकर आध्यात्मिक तक पहुंचे, क्योंकि जब तक वो हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम इस भगवद गीता को या किसी भी ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे और ना ही समझने का प्रयास करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए जब तक हमें आत्मा के विषय में पता चल जाएगा कि हम आत्मा हैं और हमें भगवान से अपने संबंध को फिर से स्थापित करने के लिए प्रयत्न करना है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, उससे संबंध स्थापित किए बगैर तो हमारा कभी भी हमें ना शांति प्राप्त होगी ना सुख प्राप्त होगा। तो जब तक हमें आत्मा के विषय में तब तक पूरा खबर नहीं पड़ जाती है तब तक भगवान श्री कृष्ण बताते रहेंगे। कृपया साथ लीजिए। हरे कृष्ण।